एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिमाग खोलने वाली किताब पर बात करने वाले हैं।
बिल्कुल नमस्कार। आज बात होगी डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी की किताब प्रीस्वेशन अ रिवोल्यूशनरी वे टू इन्फ्लुएंस एंड परसुएड पर। सियाल्डिनी मतलब प्रभाव या इन्फ्लुएंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम।
हाँ, और ये किताब ना एक बड़ा ही मजेदार सवाल खड़ा करती है। क्या किसी को हाँ कहलवाने का या अपनी बात मनवाने का जो असली खेल है वो असल बातचीत शुरू होने से पहले ही खेला जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना?
अजीब तो लगता है, पर सोचिए आज के टाइम में ये कितना जरूरी है समझना। हम पर लगातार मतलब हर तरफ से इन्फॉर्मेशन की, एड्स की, सोशल मीडिया की बौछार हो रही है।
हाँ बिल्कुल।
तो ऐसे में कुछ बातें क्यों हमें छू जाती हैं और कुछ क्यों बेअसर रह जाती हैं, ये किताब इसी के पीछे का साइंस समझाती है। और ये तकनीकें ये तो हर जगह यूज हो रही हैं, मार्केटिंग में, लीडरशिप में,
पॉलिटिक्स में भी।
हाँ पॉलिटिक्स में, और यहाँ तक कि हमारी अपनी रोज की बातचीत में भी। तो पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात करें। डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी, इनको इन्फ्लुएंस पर्सुएजन नेगोसिएशन मतलब राजी करने की कला का दुनिया का शायद सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। सालों तक पढ़ाया है इन्होंने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी और मार्केटिंग।
और उनकी सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो उनका तरीका है। वो सिर्फ लैब वाले रिसर्चर नहीं है। उनकी जो पहली बहुत फेमस किताब थी इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन,
जी जी इन्फ्लुएंस,
उसके लिए वो 3 साल तक सोचिए अलग अलग जगह अंडरकवर काम करते रहे।
जी
पुरानी कारें बेचने वालों के यहाँ, टेलीमार्केटिंग फर्म्स में, चैरिटी वालों के साथ, ये समझने के लिए कि असल दुनिया में लोग कैसे दूसरों को हाँ बुलवाते हैं।
कमाल का तरीका है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। और उसी इन्फ्लुएंस किताब में वो 6 प्रिंसिपल्स दिए थे उन्होंने, जो आज भी उतने ही रिलेवेंट है। रेसिप्रोसिटी मतलब लेन देन,
हाँ, स्कैसिटी यानी जो कम है वो कीमती है,
अथॉरिटी मतलब एक्सपर्ट की सुनो,
कंसिस्टेंसी अपनी बात पर टिके रहो,
लाइकिंग यानी पसंद का मामला,
और सोशल प्रूफ मतलब भेड़ चाल या जैसा सब कर रहे वैसा करो। ये 6 सिद्धांत।
बिल्कुल।
और ये जो किताब है प्रीसुएजन, ये उसी रिसर्च का अगला पड़ाव है और शायद ज्यादा हैरान करने वाला। अगर इन्फ्लुएंस ने बताया कि प्रभाव के सिद्धांत क्या हैं, तो प्रीसुएजन ये बताती है कि उन्हें सबसे ज्यादा असरदार बनाने के लिए कब और कैसे माहौल तैयार करना है। ये कोई 7वां सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक तरह की मास्टर की है।
हाँ, जो बाकी चाबियों को और असरदार बना दे।
बिल्कुल।
तो फिर ये प्रीसुएशन आखिर चीज क्या है, मतलब किताब का मेन आइडिया क्या है? अब मेन आइडिया ये है कि आपका मैसेज कितना असरदार होगा ये इस बात पर उतना डिपेंड नहीं करता कि मैसेज में है क्या।
अच्छा।
हाँ, बल्कि इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है कि मैसेज सुनने वाले का दिमाग, उसका मन, उस मैसेज को सुनने से ठीक पहले कैसे तैयार किया गया है,
मतलब पहले स्टेज सेट करना है।
एग्जैक्टली। सियाल्डिनी इसे कहते हैं प्रिविलेज्ड मोमेंट, एक विशेषाधिकार प्राप्त क्षण। एक बहुत छोटा सा टाइम विंडो होता है जब कोई इंसान किसी खास आइडिया या सुझाव के लिए सबसे ज्यादा ओपन होता है, रिसेप्टिव होता है।
और ऐसा क्यों होता है, मतलब दिमाग क्यों खुल जाता है उस वक्त?
क्योंकि उसका ध्यान बड़ी चालाकी से अक्सर अनजाने में ही किसी ऐसे विचार पर फोकस कर दिया गया होता है जो आने वाले मैसेज से जुड़ा हुआ है या उसे सपोर्ट करता है।
हाँ, और किताब इसी पहली को तो सुलझाती है कि कभी कभी लोग किसी प्रपोजल की पूरी बात सुनने से पहले हाँ क्यों बोल देते हैं।
हाँ, ये होता है कई बार।
सियाल्डिनी कहते हैं इसका राज है अटेंशन को फ्रंट लोड करना। मतलब किसी का ध्यान अगर आप एक खास विचार पर टिका दें तो आप अनजाने में ही उस विचार की इम्पोर्टेंस बढ़ा देते हैं।
अच्छा।
फिर जब आप उसी से जुड़ा हुआ कोई सुझाव देते हैं तो वो उसके लिए ज्यादा तैयार मिलता है।
और इस सब के पीछे जो इंजन है, जो मेन प्रिंसिपल है, वो है व्हाट्स फोकल इज कॉजल।
What's focal is causal?
ये लाइन बार बार आती है किताब में।
What's focal is causal?
हाँ, सुनने में थोड़ा टेक्निकल है पर मतलब सीधा सा है। जिस चीज पर हमारा ध्यान उस पल फोकस होता है, हमें वही चीज ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा असरदार और उस सिचुएशन का मुख्य कारण लगने लगती है। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है।
ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब हम अनजाने में ही चीजों को ज्यादा महत्व दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा ध्यान उन पर चला गया है।
बिल्कुल। और इसीलिए ये किताब सिर्फ मार्केटर या सेल्स वालों के लिए नहीं है, ये तो हर उस इंसान के लिए है जो बेहतर कम्युनिकेट करना चाहता है। पेरेंट्स, टीचर्स, लीडर्स, कोई भी।
और साथ ही ये हमें एक स्मार्ट कंज्यूमर या नागरिक भी बनाती है ताकि हम समझ सकें कि कब कोई हमारे ध्यान को मोड़कर हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। चलिए तो अब किताब के अंदर झांकते हैं जरा। इसे तीन मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रीसुएजन, ध्यान का फ्रंट लोडिंग। सियाल्टिनी यहाँ एक कंसल्टेंट की कहानी से शुरू करते हैं जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीतने में माहिर था। उसकी ट्रिक पता है क्या थी?
क्या थी बताइए।
वो मीटिंग शुरू करने से पहले क्लाइंट से बस एक सवाल पूछता, क्या आप खुद को एक एडवेंचरस मतलब साहसी इंसान मानते हैं?
अरे वाह, और कौन मना करेगा, ज्यादातर तो हाँ ही कहेंगे।
बिल्कुल, और बस यही खेल हो जाता था। जो लोग खुद को साहसी मान चुके होते थे वो उसके नए थोड़े रिस्की बिजनेस आइडियाज को ट्राई करने के लिए कहीं ज्यादा तैयार मिलते थे। उसने पहले ही उनके दिमाग में साहस का बटन दबा दिया था।
ये तो बिल्कुल सीधा सीधा उस प्रिविलेज्ड मोमेंट का उदाहरण है। पहले माहौल बनाया, फिर अपनी बात रखी। जबरदस्त,
सही पकड़ा। हमारा दिमाग कोई खाली कंप्यूटर नहीं है। जो आइडिया उस पल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर चल रहा होता है, जिसे टॉप ऑफ माइंड कहते हैं, वो टेम्परेरिली बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है
और हमारे अगले फैसले को गाइड करने लगता है।
हाँ, और यही वो सिद्धांत काम करता है, व्हाट्स फोकल इज कॉजल, जिस पर ध्यान वही कारण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद मीडिया कवरेज है ना?
बिल्कुल, जिन इश्यूज को मीडिया ज्यादा दिखाता है हमें लगता है वही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, भले ही हमारी अपनी जिंदगी पे उनका असर कम हो। ध्यान खींचना ही पहला कदम है।
बिल्कुल, पर सिर्फ ध्यान खींचना ही काफी नहीं है, उसे बनाए रखना भी तो जरूरी है।
हाँ, और यहीं से किताब का दूसरा भाग शुरू होता है, प्रक्रियाएं, जुड़ाव या एसोसिएशन की भूमिका। ये पाठ बताता है कि ध्यान खींचने के बाद क्या होता है और कौन सी चीजें हमारा ध्यान खींचती हैं। सियाल्टिनी कहते हैं तीन चीजें हैं जो नेचुरली हमारा ध्यान खींचती हैं, सेक्सुअल चीजें, खतरे वाली चीजें,
हाँ डेंजर,
और कुछ नया या अलग, नॉवेल्टी।
हाँ
एडवर्टाइजिंग में तो ये खूब इस्तेमाल होता है।
हाँ ये तो हम रोज देखते हैं, पर ध्यान को पकड़े रखने के लिए क्या चाहिए? मतलब खींचा तो, पर टिका कैसे रहे?
उसके लिए सियाल्टिनी बताते हैं मैग्नेटाइजर के बारे में, वो चीजें जो ध्यान को चुंबक की तरह चिपका लेती हैं। इसमें मेन है सेल्फ रेलेवेंट जानकारी, मतलब वो बातें जो मुझसे या हमसे जुड़ी हों।
हाँ अपना फायदा है अपनी बात।
दूसरी है अधूरापन, दी अनफिनिश्ड। जैसे कोई सस्पेंस वाली कहानी बीच में छोड़ दो तो दिमाग वहीं अटका रहता है। इसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग अधूरे काम या कहानियों को भूल नहीं पाता।
अरे हाँ ये तो होता है, कोई दाना अधूरा याद आ रहा हो तो वही घूमता रहता है दिमाग में।
बिल्कुल, और तीसरी चीज है रहस्य। किसी जानकारी को एक पहेली की तरह पेश करना लोगों को ज्यादा एंगेज करता है।
तो ये तो हो गए मैग्नेटाइजर्स।
और इस भाग में वो जुड़ाव एसोसिएशन की बात भी करते हैं।
हाँ, और ये शायद सबसे पावरफुल आइडिया है इस सेक्शन का। हमारा दिमाग जो है वो जुड़े हुए विचारों के नेटवर्क की तरह काम करता है। एक आइडिया को एक्टिवेट करो तो उससे जुड़े दूसरे आइडिया भी दिमाग में ऊपर आ जाते हैं। इसे प्राइमिंग कहते हैं।
प्राइमिंग जैसे?
जैसे वो फर्नीचर स्टोर वाला उदाहरण, वेबसाइट के बैकग्राउंड में सॉफ्ट बादलों की तस्वीरें लगाई तो आरामदायक सोफे ज्यादा बिकने लगे। लोगों ने अनजाने में बादलों को आराम से जोड़ लिया।
अरे वाह, ये तो कमाल है। और वो वाइन शॉप वाला भी तो ऐसे ही था।
हाँ हाँ, जहाँ फ्रेंच म्यूजिक बज रहा था तो लोग फ्रेंच वाइन खरीद रहे थे, जर्मन म्यूजिक पर जर्मन वाइन, और उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि म्यूजिक उनके डिसीजन को बदल रहा है। मतलब हम कितने सबकॉन्शियस लेवल पर प्रभावित होते हैं।
बिल्कुल, और ये सिर्फ शब्दों या तस्वीरों तक नहीं है। सियाल्टिनी ने इसे परसुएसिव ज्योग्राफीज कहते हैं, मतलब हमारा माहौल, हमारी जगह भी हमें प्रीसुएड करती है। कंपटीशन वाले माहौल में हम सेल्फिश हो सकते हैं, जबकि शांत सहयोगी माहौल में हेल्पफुल।
वाह, मतलब हमारे आसपास की हवा भी हमें एक दिशा में धकेल रही है, कमाल है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी भाग पर, सर्वोत्तम अभ्यास प्रीसुएशन का अनुकूलन। यहाँ सियाल्टिनी वापस अपनी पुरानी किताब इन्फ्लुएंस के उन छह सिद्धांतों पर आते हैं, रेसिप्रोसिटी, लाइकिंग, सोशल प्रूफ, अथॉरिटी, स्कार्सिटी, कंसिस्टेंसी। लेकिन अब वो बताते हैं कि प्रीसुएशन का असली काम क्या है।
क्या है
उसका काम? है आने वाले मैसेज के लिए जो सिद्धांत सबसे फिट बैठता हो उस पर व्यक्ति का ध्यान फोकस करना।
अच्छा, तो मतलब प्रीसुएशन उन छह सिद्धांतों को जगाने का, एक्टिवेट करने का एक तरीका है। जैसे अगर मुझे अपनी बात मनवानी है अथॉरिटी का इस्तेमाल करके, तो मैं बातचीत से पहले अपनी क्वालिफिकेशन बता दूं।
बिल्कुल, आप पहले माहौल बनाते हैं उस स्पेसिफिक सिद्धांत के लिए, और फिर सियाल्टिनी एक और सातवें सिद्धांत की बात करते हैं, एक नया प्रिंसिपल, एकता।
यूनिटी,
एकता, लाइकिंग से अलग है ये।
हाँ, ये सिर्फ पसंद करने से ज्यादा गहरी बात है। एकता का मतलब है साझा पहचान, हम वाली फीलिंग, जब हम किसी को अपने में से एक मानते हैं, चाहे परिवार हो, शहर हो, देश हो या कोई भी ग्रुप, तो उसका असर हम पर कई गुना बढ़ जाता है।
हाँ, ये हम वाली भावना, ये तो बहुत पावरफुल होती है।
हम भारतीय, हम दिल्ली वाले, हम इस कंपनी के लोग, ये पहचान हमें जोड़ती है।
और सियाल्डनी कहते हैं कि ये एकता सिर्फ पहचान से नहीं बल्कि साझा अनुभवों से भी आती है, जैसे साथ मिलकर कोई मुश्किल काम करना या एक ताल में कोई एक्टिविटी करना।
अच्छा, जैसे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज।
हाँ बिल्कुल। और आजकल मार्केटिंग में जो को क्रिएशन चल रहा है, जहां कस्टमर्स को प्रोडक्ट बनाने में शामिल करते हैं, वो भी इसी एकता के सिद्धांत पर काम करता है।
सही बात है।
और इस भाग की सबसे जरूरी बात, नैतिक इस्तेमाल, एथिकल यूज।
हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये तकनीकें बहुत शक्तिशाली हैं, इनका गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है।
बिल्कुल। और सियाल्डिनी ऐसे लोगों को तीन कैटेगरी में रखते हैं, बंगलर्स जिन्हें पता ही नहीं कि कैसे मनाना है, स्मगलर्स जो चालाकी और धोखे से इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, और डिटेक्टिव्स जो ईमानदारी से इन सिद्धांतों का उपयोग सबके भले के लिए करते हैं, एक विन विन सिचुएशन बनाने के लिए।
तो वो कहते हैं कि स्मगलर नहीं डिटेक्टिव बनना है।
हाँ, क्योंकि स्मगलिंग शायद शॉर्ट टर्म में काम कर जाए पर लॉन्ग टर्म में ये भरोसे को खत्म कर देती है, और भरोसा ही सबसे बड़ा पर्सुएशन टूल है।
साइका, और अंत में वो पोस्ट सिचुएशन की भी बात करते हैं, यानी किसी के हाँ कहने के बाद क्या करें ताकि वो अपनी बात पर टिका रहे।
हाँ, जैसे उनसे कोई छोटा सा कमिटमेंट लिखवा लेना या पब्लिकली उनकी सहमति लेना।
वाह, तो इस पूरी काफी गहरी बातचीत से अगर कुछ मेन पॉइंट्स निकालने हो तो क्या होंगे? मेरे लिए तो पहला टेक अवे यही है, पहला, रिक्वेस्ट से पहले का मोमेंट क्रिटिकल है। आप क्या कह रहे हैं इससे ज्यादा जरूरी ये हो सकता है कि आपने कहने से पहले माहौल कैसा बनाया है। इफेक्टिव कम्युनिकेटर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्रिएटर होते हैं।
बिल्कुल। और दूसरी बात जो मेरे लिए बहुत अहम है, दो, ध्यान ही इन्फ्लुएंस का गेटवे है। हम जिसका ध्यान जहां खींचते हैं वही चीज उसके लिए प्रायोरिटी बन जाती है। ध्यान को डायरेक्ट करना ही पहली कला है।
तीसरा, वो कैची लाइन। तीन, व्हाट्स फोकल इज कॉजल, जिस पर फोकस वही कारण। ये मेंटल शॉर्टकट बताता है कि हम कैसे तात्कालिक फोकस को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं।
चौथी बात जो थोड़ी डरापी भी है, फोर, एसोसिएशन और प्राइमिंग की अनदेखी ताकत। हमारे कितने सारे फैसले चुपचाप हमारे आसपास के छोटे छोटे संकेतों से बदल रहे होते हैं, दुकान का म्यूजिक, कमरे का रंग, इस्तेमाल हुए शब्द, हम लगातार प्राइम हो रहे हैं बिना जाने।
पांचवा, वो नया सिद्धांत, फाइव, एकता की शक्ति, साझा पहचान, हम वाली फीलिंग, सिर्फ पसंद या समानता से कहीं ज्यादा पावरफुल मोटिवेटर है।
और छठा, जो शायद सबसे बुनियादी है, सिक्स, एथिक्स सबसे ऊपर है। सियाल्डिनी बार बार कहते हैं कि इन तकनीकों का इस्तेमाल धोखे से स्मगलिंग न करें, लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट ही सब कुछ है और वो ईमानदारी डिटेक्टिव बनकर ही बनता है। इस किताब में कुछ लाइनें हैं जो सच में याद रह जाती हैं।
हाँ, जैसे ये वाली, सबसे अच्छे प्रेरक प्रीसुएशन के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ बनते हैं, संदेश का सामना करने से पहले प्राप्तकर्ताओं को संदेश के प्रति ग्रहणशील बनाने की व्यवस्था करने की प्रक्रिया। ये पूरी किताब का निचोड़ है, एक तरह से तैयारी ही सब कुछ है।
और वो छोटी सी लाइन, व्हाट्स फोकल इज कॉजल, जिस पे ध्यान वही कारण, ये तो जैसे एक मंत्र है।
एक और जो हमारे सोचने के तरीके पर सवाल उठाती है, अक्सर वो कारक जो किसी स्थिति में किसी व्यक्ति की पसंद को निर्धारित करता है वो नहीं होता जो सबसे लॉजिकल हो, बल्कि वो होता है जिसे निर्णय के क्षण में दिमाग में सबसे ऊपर ला दिया गया हो। ये दिखाता है कि हम कितने तात्कालिक हैं।
और एकता के बारे में कितनी सही बात है, एकता सिर्फ समान या परिचित होने के बारे में नहीं है, ये दूसरों के साथ एक होने के बारे में है, एक पहचान साझा करना, ये हम की गहराई बताती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब ज्ञान की बातों का हम अपनी रोज की जिंदगी में क्या करें? क्या ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसके बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे सेल्स या मार्केटिंग में, सीधा प्रोडक्ट बेचने के बजाय पहले क्लाइंट से उसकी जरूरतों या सपनों पर बात करें। आप अगले 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं, इससे बाद में जब आप सोल्यूशन देंगे तो वो ज्यादा फिट लगेगा।
हाँ, या नेगोशिएशन में, मीटिंग शुरू करने से पहले हम साथ मिलके एक अच्छा रास्ता निकालेंगे, या हमारी पार्टनरशिप जैसे शब्द इस्तेमाल करके माहौल को सहयोगी बना सकते हैं। इससे डिफेंसिव होने के बजाय लोग सहयोग के लिए तैयार हो सकते हैं।
लीडरशिप में भी ये बहुत काम का है। मान लीजिए कोई मुश्किल बदलाव आने वाला है, उसकी घोषणा करने से पहले लीडर टीम की पुरानी कामयाबियों या मुश्किलों से उभरने की कहानियां सुनाकर शुरू कर सकता है। इससे लोग बदलाव को खतरे की तरह नहीं, एक चैलेंज की तरह देखने के लिए तैयार हो सकते हैं।
और घर पे पेरेंटिंग में?
हाँ, पेरेंटिंग में भी। बच्चे को होमवर्क के लिए कहने से पहले शायद आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट होना कितना अच्छा होता है या सीखने से कितने नए रास्ते खुलते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। उसे सही माइंडसेट में लाना।
या रिश्तों में? किसी मुश्किल टॉपिक पर बात करने से पहले शायद उस वक्त को याद करके शुरू करें जब आपने साथ मिलकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व की थी। ये एकता वाली बात लागू होती है और माहौल थोड़ा नर्म हो जाता है।
हाँ, बिल्कुल।
यहाँ तक कि हम खुद को सुधारने के लिए भी खुद को प्रीसुएट कर सकते हैं। जैसे अगर सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात को ही जूते और कपड़े निकाल कर रख दें, सुबह नजर पड़ेगी तो एक्सरसाइज का आइडिया ज्यादा पावरफुल लगेगा।
हाँ, ये छोटे छोटे स्टेप्स बड़े काम के होते हैं। मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि इन्फ्लुएंस करना सिर्फ अच्छे आर्ग्यूमेंट देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही टाइम पर सही माहौल कैसे बनाया जाए। ये कॉन्टेक्स्ट और टाइमिंग की अहमियत को बहुत अच्छे से समझाता है।
और मेरे लिए सबसे मज़ेदार बात ये जानना रही कि हमारे फैसले कितनी गहराई तक हमारे आसपास के सूक्ष्म संकेतों और हमारे ध्यान के फोकस से जुड़े हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। ये किताब हमें न सिर्फ इन तकनीकों को पहचानने का एक टूल देती है ताकि हम ज़्यादा जागरूक बने, बल्कि ये हमें एक जिम्मेदारी भी देती है कि हम इनका इस्तेमाल ईमानदारी से करें, एक डिटेक्टिव की तरह, स्मगलर की तरह नहीं।
बिल्कुल सही कहा। और शायद अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये रह जाता है कि जब हम इन तकनीकों को पहचानना सीख जाते हैं तो क्या हम इनके गलत इस्तेमाल से खुद को बचा पाते हैं, और क्या फिर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम इनका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें और गलत इस्तेमाल को रोकें? ये सोचना जरूरी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश फाप के लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।